الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلطان دو جہاں، نبی غیب دا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحفے پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم کا ذکر خیر اس پروگرام میں ہم کرنے کی، سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں. آج انشاءاللہ الکریم علم مصطفیٰ کے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، بالخصوص قرآن میں جو شان علم مصطفیٰ کو بیان کیا گیا اس کو سنیں گے. یاد رہے کہ سارا ہی قرآن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے. کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاسین کہا گیا، کہیں حامیم کہا گیا، کہیں توسین کہا گیا، والشمس کہا گیا، والضحا کہا گیا، خاتم النبیین فرما کر آپ کے آخری نبی ہونے پر مہر لگا دی گئی. تو کئی شانیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں بیان کی گئی. اسی طرح علم کو بھی اسپیشلی بیان کیا گیا، اور ایک نہیں کئی مقامات پر اس کو بیان کیا گیا. آج کے پروگرام میں بالخصوص شان علم مصطفیٰ کو ہم سنیں گے اور عشق رسول کو دل میں بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ کریم ہمیں ادب کے ساتھ اول آخر اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا کیا گیا. جی سید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اس کا شان نزول خزان الفان میں یوں ہے کہ مکے والوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ کوئی بشر، کوئی انسان انہیں سکھاتا ہے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی شان یہ بیان کی، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان اپنے محبوب کو قرآن سکھاتا ہے. اچھا، اب نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو آیات کے تحت کیا لکھا. اچھا، یہاں میں مختصراً مفتی صاحب کا تعارف بھی کراؤں. مفتی احمد یار خان نعیمی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں. اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑے شاعر بھی تھے، حکیم بھی تھے، حافظ بھی تھے، سید بھی، مفتی بھی، اور خلیفہ اعلی حضرت بھی. خزان الفان تفسیر آپ نے لکھی.
جب مفتی صاحب جو ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے مرید ہیں.
جی، اور مفتی صاحب نے منقبتیں بہت لکھی مفتی نعیم الدین مراد آبادی کی شان. اور اعلی حضرت کا تعارف مفتی احمد یار خان نعیمی کو نعیم الدین مراد آبادی نے کروایا تھا. خیر، مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو تفسیر نور العرفان جو ہے نا، اس کی جدا شان. تفاسیر ساری اچھی ہیں جو بھی علماء اہل سنت نے لکھی ہیں، مگر جو اس کی شان عشق رسول سے معمور اور لبریز، ماشاءاللہ، زبردست تفسیر. آپ لکھتے ہیں کہ یعنی ہم نے دو آیتوں کے تفسیر آپ فرما رہے ہیں، اپنے حبیب کو الفاظ قرآن، معنی قرآن، احکام قرآن، اسرار قرآن، رموز قرآن خوب سکھا دیے. کب سکھائے؟ حق یہ ہے کہ سکھا کر دنیا میں بھیجا. اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. نمبر ایک، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ تعلیم رحمت و محبت کی بنا پر فرمایا، और मेहरबान उस्ताद सआदतमंद शागिर्द को सब कुछ पढ़ा देता है। दूसरी बात, हुजूर तमाम अंबिया से बड़े आलिम, आदम अलैहि सलाम को रब ने चीजों के नाम सिखाए, सुलेमान अलैहि सलाम को परिंदों की बोलियां, दाऊद अलैहि सलाम को जीरा बनाना, खिजर अलैहि सलाम को इल्मे बातनी, नूह अलैहि सलाम को किश्ती बनाना, हुजूर को कुरान सिखाया जिसमें लोहे महफूज के उलूम की तफसील यानी डिटेल है। तीसरी बात, मुफ्ती साहब लिखते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खल्क से ज्यादा आलिम है, कि और लोग मखलूक के शागिर्द हुए हुजूर खालिक के, जब पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाले महबूबे रब, जो किताब पढ़ी वो कुरान, तो बताओ अब इल्म मुस्तफवी में कमी कैसी। चौथी बात, हुजूर हजरते जिब्रीले अमी अलैहि सलाम के शागिर्द नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है रहमान वल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। हुजूर का इल्म मखलूक के वास्ते के बगैर रब का अतिया है, लिहाजा उसकी पैमाइश या अंदाजा नहीं हो सकता, कितना इल्म, कितना
जब देने वाला रब है,
देने
सुभान
वाला
अल्लाह।
रब है। अच्छा, और मजीद मुफ्ती साहब फरमाते हैं, ये भी मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतशाबिहात कुरानिया का इल्म दिया गया। जब सारा कुरान रब ने सिखाया, अर रहमान अल्लम अल
अल्लाह
कुरान,
कुरान,
अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, कितना सिखाया, सारा सिखाया, तो उसमें मुतशाबिहात हुरूफ मुकत्तआत वगैरह, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा वगैरह, जो ये सब कितना भी इल्म था। अच्छा, हुरूफ मुकत्तआत के अलावा भी मुतशाबिहात का इल्म है ना कुरान में, तो सब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सिखा दिया। अल्लाह अकबर। और सूरह रहमान की अगली दो आयात में शाने इल्म मुस्तफा का क्या बयान हुआ, खलकल इंसाना अल्लमहुल बयान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मा काना वमा यकून का इल्म उन्हें सिखाया। और तफसीर खाजन के हवाले से है कि इंसान से इस आयत में सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा मुराद हैं, और क्या बयान सिखाया, क्या सिखाया, बयान क्या सिखाया, मा काना वमा यकून, जो हो चुका जो होगा, जब भी हम कहते हैं आलिमे मा काना वमा यकून मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलीन व आखरीन की खबरें देते थे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन आयतों और तफासीर से मालूम हुआ कुरान पाक में सब कुछ है और उसका सारा इल्म हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया।
हजूर, अगर इसी मफहूम को हम देखते हैं, सूरह अनआम में जो इरशाद हुआ, मा फरतना फिल किताबी मियो शई, तो इस किताब में हमने कोई चीज ऐसी नहीं है कोई जिसमें कोई कमी छोड़ी हो, यानी हमने इस किताब में किसी शय की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जो ये कुरान में किताब कहा गया, तो तफसीर में है कि या लोहे महफूज मुराद है या कुरान पाक मुराद है, इन दो जगहों पर हर चीज का बयान मौजूद है और इसका इल्म प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दिया गया। तो पता चला कि हर चीज का इल्म प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दिया गया है।
अशार सुनाऊं आला हजरत,
माशाल्लाह, जरूर, मरहबा।
उन पर
पर
किताब उतरी बयान लिकुल्ली शई, तफसील जिसमें मा अबरो मा गबर की है, फजले खुदा से गैब शहादत हुआ इन्हें, फजले खुदा से गैब शहादत हुआ इन्हें, इस पर शहादत आया तो वहयो असर की है, कहना न कहने वाले थे जब से तो इत्तिला। अकाली सलातु इस्लाम का इल्म कब से है, तो आला हजरत वो उसको नज्म कर रहे हैं, अशार में बयान कर रहे हैं, कहना न कहने वाले थे जब से तो इंतिला, मौला को कौलों का इलो हर खुशको तरकी है, न कहना था न कहने वाले थे जब से अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सारी इतिला दे दी। और क्या इतिला, क्या कहना होगा, कौन कहने वाले होंगे, और खुश्क तर तमाम उलूम अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इनायत फरमा दी।
میں اس پر تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا.
جی
اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, میرے پیارے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اس امت پر بلکہ پچھلی امتوں کے اعمال پر بھی شاہد ہوں گے, گواہ ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ سب ارواح سے پہلے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ساری کی ساری مخلوقات سے پہلے. میرے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری,
سبحان اللہ,
سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. اور حدیث جابر کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی اسی مضمون کو ذکر کیا گیا, یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے.
سبحان,
ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم, تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے, پچھلی امتوں کے احوال بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آشکار ہیں, اور اس امت کے اعمال تو ویسی بارگاہ رسالت میں پیش کیے جاتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ کہ اول ما خلق اللہ القلم,
سبحان
اللہ تعالی جل جلالہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا.
جی,
تو جب قلم بنائی گئی نا, تو اب اس کو ارشاد فرمایا گیا
لکھ,
اکتما کانا وما یکون,
جو ہونے والا ہے لکھ,
جو ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. اول ما خلق اللہ القلم, سب سے پہلے تو قلم بنا ہے, تو قلم سے پہلے کیا تھا؟ تو قلم سے پہلے نور محمد ہی تھا. تو اس کا ذکر کیا گیا کہ جو ہو چکا ہے اس کو بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولین آخرین, ظاہر و باطن, خشک و تر, کائنات کے ذرے ذرے سے باخبر.
سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں علم مصطفیٰ کو بیان کیا گیا اور علم غیب مصطفیٰ کو بھی بیان کیا گیا, جیسا کہ سورہ جن میں ارشاد ہوتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ پاک اپنے غیب جو ہے اپنے چنے ہوئے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. تفسیر عزیزی میں ہے اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو پسند فرمائے, اور وہ رسول ہوتے ہیں جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کو اپنے بعض خاص غیب بھی ظاہر کر دیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اعلیٰ حضرت کے شعر بھی آپ نے سنائے کہ غیب ان کے لیے ظاہر ہو گیا, تو چنے ہوئے رسولوں کو غیب کا علم دیا جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو چنے ہوئے رسول ہیں ان میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس طرح
وجہ تخلیق کائنات تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات.
سبحان اللہ. تو علم غیب مصطفیٰ کے متعلق مزید کیا فرماتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنی, یہ رسول غیب کی خبریں بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے. جب بخل سے کام نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے بیان فرماتے چلے جاتے ہیں. محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے دور طالب علمی کی ایک بات ذکر فرمائی, جس وقت آپ بریلی شریف پڑھا کرتے تھے تو آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا, تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی نے بلایا نا, ظاہری طور پر مذہبی وضع قطع والا تھا اور شیطان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے, اور شیطان ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں. محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کو اس نے روکا.
ادھر ادھر سے کیا مراد ہے؟
جنات میں بھی انسانوں میں بھی.
صحیح.
بعض انسان کتابیں کھول کھول کے, آیات پڑھ پڑھ کے, احادیث تفاسیر پڑھ پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو تلاش کرتے ہیں, اور کچھ جنوں وہ تنقید کی اینک لگا کے
استغفر.
جہاں کوئی کمی والی بات نظر آئے گی, جہاں کوئی اس طرح کا, وہ کھینچ تان کے بھی نکال کر لے آئیں گے. تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو روکا, اور روکنے کے بعد نہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے. آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی کہتے ہیں. اس نے نیچے سے تنکا اٹھایا, कहने लगा कि क्या आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस तिनके का भी इल्म है। वो हदीस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वो फौरी तौर पर सवाल था, तो इब्तदान तो थोड़ा सा वो शाक महसूस हुआ कि इसका जवाब क्या दूं इसे, लेकिन फौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तवज्जोहात की बरकत नसीब हुई, मेरे जहन में एक हदीस आई। कहने लगा मैंने उसे फरमाया कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन शैइन इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह।
हर शे जानते हैं अल्लाह
कायनात
का
की
रसूल।
कोई शय ऐसी नहीं है जो ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल।
वाह वाह,
तो
क्या
ये
शान है
हदीस
हुजूर
सही है?
आजम पाकिस्तान।
कहने लगा जी सही है, ये हदीस तो है। तो आप फरमाने लगे कि ये तिनका भी शय में तो आता है ना, ये तिनका जानता है कि वो अल्लाह के रसूल है और वो नहीं जानते कि ये क्या है। ये तिनका
अल्लाह
जानता है, अल्लाह के हबीब नहीं जानते।
अल्लाह
तिनके को क्या,
अकबर।
सारी कायनात को जानते।
बिल्कुल
और कोई गैब क्या तुमसे निहां हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे
ऐसा।
करोड़ों दूर। चासद भाई, अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान की तो शान इल्म के साथ बयान की, यानी इल्म की इतनी हैसियत है, इतनी शान है कि इल्म शान बढ़ाता है, दर्जात बढ़ाता है। अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया किराम भेजे वो सारे उलमा थे,
सारे आलम
और सारे अपने कबीले के, अपने वतन के जिनकी तरफ भेजे गए उनमें सबसे आलम थे, बड़े आलिम थे। तो देखिए इल्म शान बढ़ा रहा है ना। और जब इल्म की बात होती है तो बहुत सारे उलूम, दीन के, दुनिया के बहुत सारे उलूम हैं। असल इल्म वो है जो बंदे को उसके रब के करीब करता है, जो आखिरत की तैयारी में मुआविन हो। असल इल्म वो है जो अल्लाह की रजा का बायस बने। असल इल्म वो है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा का बायस बने, जन्नत के रास्ते पर चला दे, जहन्नम के रास्ते से हटा दे, अकायद ठीक कर दे, अमाल ठीक कर दे।
शख्स आदि कहते हैं इल्म में के राह हक न नुमाया जहालत अस,
नहीं वो इल्म जो हिदायत का रास्ता ना दिखाए वो इल्म थोड़ी है, वो तो जहालत है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब वो तलबा जो माशाल्लाह इल्म दीन सीखने के लिए जामियात में आते हैं, मदारिस में आते हैं, कितने खुश नसीब। और वो कौन सा इल्म पढ़ रहे हैं ये जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेके जाने वाला है, खुश अकीदगी की तरफ लेके जाने वाला है, जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है, रब की रिजा की तरफ लेके जाने वाला है।
विलायत का जिक्र किया गया ना, वली कौन है, तो कुरान ने जिक्र किया अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, दो वस्फ जिक्र किए गए,
ईमान और
ईमान
तकवा।
और तकवा। ईमान इसका ताल्लुक है अकीदे के साथ और तकवा इसका ताल्लुक है आमाल के साथ। मकाम कुर्ब, मकाम विलायत, मकाम मोहब्बत उसी को मिलेगा जिसका अकीदा भी ठीक होगा, अमल भी ठीक होगा।
अच्छा, अकायद और अमाल की इसलाह कौन करेगा? इल्म।
इल्म के जरिए
इल्म होगा तो अकीदा ठीक होगा ना, इल्म होगा तो अमल ठीक होगा ना।
अमल से पहले इल्म चाहिए।
जी बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला ने कभी किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया।
बनी आदम अज इल्म याबद कमाल न अज हशमत हो जाहो मालो मना। औलाद आदम को अल्लाह ताला जल जलालुहु ने इल्म के जरिए इज्जत अता फरमाई।
सुभान अल्लाह।
मालो मना, लश्कर जर्रार, जाहो जलार, ये तो कुछ भी माना नहीं रखते।
तो ये वाकई इल्म के साथ जो प्यारे अकालतम का जिक्र किया जा रहा है तो इल्म की अहमियत है। तो नाजरीन भी इसके लिए कोशिश करें इल्म हासिल करने के लिए। जो जराए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने कितने जराए दे दिए, खुद मदनी चैनल जिस पर आप इस वक्त मौजूद हैं ये भी इल्मे दीन का जरिया, इसका थोड़ा वक्त बढ़ा दें, इसको मजीद देखा करें। सोशल मीडिया दावत इस्लामी के अकाउंट्स बने हुए हैं।
अभी मदनी चैनल में मदनी मुजाकरा बाकी है, दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत बाकी है, कितने प्रोग्राम है, कितने सिलसिले, दिन रात तकसीम इल्म ही तो हो रहा है अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह पाक नसीब फरमाए और उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा, फिर जो इल्मे दीन सीख रहा है वो अपने आप को समझे कि यार मैं तो ये भी कैसी ना, वो एक अच्छी बात तो नहीं है ना भाई।
अजीम तरीन दौलत अल्लाह ताला जल जलालुहु ने से अता
बड़ी दौलत है। अमीर अहले सुन्नत की एक बात याद आई, आप फरमाते हैं कि जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता मैं तो उसको नहीं पढ़ा लिखा समझता। अब उसको लोग डॉक्टर साहब कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं, तो फलां कहते हैं, सर HOD कहते हैं, सलूट लगते हैं, जो मर्जी हो, कुरान ही नहीं पढ़ना आता। तो कुरान एक पढ़ने का इल्म है, समझने का इल्म है, दोनों। अभी तो पढ़ने का इल्म नहीं आ रहा, समझने का इल्म कैसे करेगा, फिर अमल कैसे करेगा।
तो
अल्लाहु
फजीलत जो बयान की गई वो इल्मे दीन की है। तो हमें दीन का इल्म सीखने की तरफ आगे बढ़ना है, इसके लिए कोशिशों को बढ़ाना और ऐसी सोबतों को इख्तियार करना है। इल्मे मुस्तफ़ा का बयान हमने सुना, अल्लाह करीम हमें फैजाने इल्मे मुस्तफ़ा अता फरमाए, इसे माला माल फरमाए। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ।
मेरा नाम अली हसनैन अत्तारी है और मैं थर्ड ईयर का तालिब इल्म हूँ, फजाने मदीना जंग सिटी से बात कर रहा हूँ। हाजी साहब की बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि क्या तुलबाए कराम दाव इस्लामी के मुख्तलिफ जिम्मेदार बन सकते हैं और उस जिम्मेदारी का फायदा क्या होता है?
लेकिन जामियतुल मदीना एक तालीमी इदारा है, इसका अपना एक निसाब है, सिलेबस है, वो तो पढ़ना ही अंडरस्टूड है। लेकिन 24 घंटे हैं ना, उसमें पढ़ना भी है, दोहराई भी है, तालीमी हलके, सोना भी है, खाना भी है। तो इसके अंदर 2 घंटे दावत इस्लामी के दीनी काम सीखना, सिखाना, फैलाना, ये भी होना चाहिए। ये कैसे होगा कि आपको जिम्मेदारी लेंगे तो आप कर सकेंगे ना। 2 घंटे किस तरह देंगे? किसी जिम्मेदारी पर होंगे, मसलन आप जेली निगरान बन गए तो 2 घंटों को बतौर जेली निगरान आप इस्तेमाल करेंगे। आप वार्ड सतह पर काफिला जिम्मेदार बन गए तो उसके लिए 2 घंटे आप दे सकेंगे। अमीर अहले सुन्नत ये पसंद फरमाते हैं कि हर जामियतुल मदीना का तालिबे इल्म इल्म दीन सीखने के साथ साथ, दरस इंतजामी करने के साथ साथ, किसी ना किसी दीनी काम की जिम्मेदारी भी ले। अच्छा, जो तलबा ये चाहते हैं कि दावत इस्लामी में रहकर हम कोई अजीम दीनी खिदमत कर सकें, तो 12 दीनी काम दौरे तालिब इल्मी से ही शुरू कर दें। याद रखें कि शैतान का ये वसवसा होता है, पहले इल्म हासिल कर, अमल बाद में करना। तो इल्म भी हासिल करना है, अमल भी करना है, और अमल के अंदर फराइज, वाजिबा, सुनन, मुस्ताहबा सब आते हैं। निकी की दावत देना भी तो एक काम है ना, एक अमल है ना, और ये सुन्नत अंबिया है निकी की दावत देना। अच्छा, फायदे क्या होंगे कि सबसे बड़ा फायदा अल्लाह की रजा है। नेकी की दावत देना सुन्नत अंबिया है, सवाब का काम है। फिर तजर्बात में इजाफा होता है, महारत में, स्किल्स में इजाफा होता है, अपने इंफरादी कोशिश के जरिए से सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बहुत जरूरी है। चाहे आप मुदर्रिस बने, चाहे आप इमाम बने, चाहे आप खतीब बने, आप मुसन्नी बन जाएं, आप जो भी बनना चाहते हैं, दीन की खिदमत ही करना चाहेंगे ना, दावत सामी तो यही जहन दे रही है। तो उसके लिए भी ये 12 दीनी कामों की जिम्मेदारी या शोबों की जिम्मेदारी आपके काम आएगी। आप देखिए, मुफ्ती दावत इस्लामी, माशाल्लाह मैंने उनको बहुत करीब से देखा, ये मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े आबिद भी थे। यार, मैंने इनको तन्हाई में तिलावत करते हुए देखा, मैंने इनको नवाफिल पढ़ते देखा। ये बहुत इबादत करने वाले भी थे, मुर्शिद से मोहब्बत करने वाले भी थे, दीनी कामों के जिम्मेदार, इलाके के निगरान थे, फिर गालिबन फिर तहसील निगरान बने। और जब इन्होंने दुनिया से पर्दा फरमाए तो कई शोबा जात के ये मिंबर, रुकन या निगरान भी थे। तो दोनों काम, सब काम साथ साथ चल सकते हैं। ये शैतानी वसवसा होता है, गफलत होती है, सुस्ती होती है। अच्छा, अगर करने के कामों में नहीं कर पड़ेंगे तो ना करने के कामों में लग जाएंगे, और फिर जिनके पास मोबाइल है और किसके पास मोबाइल नहीं, वो 2 नंबर कामों में लगा देगा, अल्लाह ना करे। तो फिर ये भी नहीं, वो भी नहीं, ना तालीम की तरफ रह सकेंगे, ना आप दीनी काम कर सकेंगे। और आप दीनी काम की जिम्मेदारी लेंगे तो निगरानों के मदनी मशवरों में बाकायदा बाजाब्ता आपको शामिल होने का मौका मिलेगा, और निगरान की नजरों में आएंगे तो इंशाल्लाह आगे भी दीनी काम की तरक्की आपको मिलेगी, तजर्बा भी मिलेगा इंशाल्लाह करीम। अल्लाह नसीब फरमाए। वो अपने जो मुतल्लिका जिम्मेदार हैं, निगरान हैं, उनसे राबता कीजिए और तंजीबी जिम्मेदारी हासिल करके दीनी कामों में मसरूफ हो जाए।
वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, या अल्लाह मुझे नेकों का इमाम बना दे। तो अगर कोई निगरानी के लिए दुआ करता है कोई हर्ज नहीं है, तमन्ना करता है कोई हर्ज नहीं, मगर किस लिए? मेरा सवाब बढ़ जाए, मेरा अजर बढ़ जाए। बड़ी जिम्मेदारी जो है सवाब भी तो बड़ा लाती है ना। तो अगर आप सीख तो रहे हैं, साथ में ये काम भी करेंगे तो इंशाल्लाह करीम आपका अजर सवाब बढ़ जाएगा। अल्लाह नसीब करे, अल्लाह नसीब करे।
बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक आयत एक अकीदा।
उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही मुबारक वसल्लम। आशिकान रसूल, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पाक पुश्तों से पाक पुश्तों की तरफ मुंतकिल होते चले आए। मरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्लाह, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमिना, इनसे लेके हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम और हम सब की अम्मी जान हजरत हव्वा तक, मेरे आका के वालिदैन में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने किसी बुत के सामने सजदा किया। कुरान पाक में अल्लाह ताला जल जलालहु ने इरशाद फरमाया, वतवक्कल अलल अजीजिर रहीम अल्लज़ी यराक हीन तकूम वतकल्लुबक फिस साजिदीन। मेरे प्यारे हबीब, आप भरोसा कीजिए उस रब पर जो गालिब और मेहरबान है, वो जो आपको क्याम की हालत में देखता है और वो जो नमाजियों में आपके दौरे को देखता है। नमाजियों में दौरे से मुराद क्या है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर किन पुश्तों से किन पुश्तों की तरफ मुंतकिल होता चला है। मेरा का फरमाते हैं, लम यस्जुद आबाई अलल असनाम कत, मेरे आबा में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसने किसी बुत के सामने सजदा किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर तैयब से ताहिर की तरफ, ताहिर से तैयब की तरफ मुंतकिल होता हुआ आगे बढ़ता चला है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदे गिरामी का नामे नामी, इसमें गिरामी तो देखिए, आपके वालिदे मुहतरम का नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह का मतलब है अल्लाह का बंदा और अम्मी जान का नाम है आमिना। अच्छा, इसी तरह अगर देखते चले जाएं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आबा में ने आपके वालिदैन में एक तदाद आपको ऐसी नजर आएगी कि जिन्होंने काबतुल्लाह की खिदमत अपने जिम्मे ली हुई थी, तो काबे के मुतवल्ली खानदान वाले थे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आबा की अजमतों का सदका हमें भी, हमारी आने वाली नस्लों को भी इस्लाम और सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम।
उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।
कुरान पाक की आयत से हमने अकीदे को समझने की कोशिश की। अल्लाह करीम हमें दुरुस्त अकायद अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए मजीद सवाल शामिल करते।
मेरा आपसे सवाल है कि आप हजरात हमें हमारे बड़ों से चलती आ रही रस्म और रिवाज से क्यों रोकते हैं? जिस बच्चे को हम मदरसे में दाखिल करवाते हैं हमारी शादी और दीगर मौकों पर आना छोड़ देते हैं, इसके बारे में बता दें।
देखिए कि जो कुरान और हदीस पर अमल कर रहा है, शरीयत पर अमल कर रहा है, तो वो तो ठीक कर रहा है। अब फंक्शन ऐसा है कि उसके अंदर अस्तगफिरुल्लाह नाच गाने का सिलसिला है, तो क्या शरीयत इजाजत देती है? तालिब इल्म नहीं, उस्ताद को, आपको, मुझे, किसी को भी नहीं इजाजत देती शरीयत। जो मुसलमान है उसको इजाजत ही नहीं है कि वो लहु लईम में पड़े नाच गाने में, या ऐसी महफिल जिसके अंदर वो गानों या उसका सिलसिला हो। अच्छा, बाज रस्में ऐसी होती हैं कि उसके अंदर गैर शरी उमूर बहुत सारे होते हैं, और आजकल तोबा अस्तगफिरुल्लाह मर्द और औरतों का इख्तिलात, इसको तो अस्तगफिरुल्लाह को बुरा ही नहीं समझता, हालांकि कितनी बुराइयों की जड़ और बुनियाद ये चीज बनती है। तो याद रखें, जो रस्में, जो फंक्शन, जो तकारीब शरीयत इस्लामिया से नहीं टकराती, तो उनसे ना हम रुकते हैं ना हम उससे रोकते हैं, ठीक है। और जो जिसको शरीयत ने मना कर दिया, तो मैं ना भी रोकूं फिर भी जायज नहीं होगा भी उसके लिए जाना। उस्ताद साहब ना भी रोकें तलबा को, तो तलबा के लिए कौन सा भी जायज हो जाएगा? आपके लिए भी जायज नहीं होगा। तो जो रस्में शरीयत के मुताबिक है उसमें हरज नहीं है, और जो रस्म शरण दुरुस्त नहीं है तो उसमें जाना भी दुरुस्त नहीं।
बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक हदीस एक सबक।
उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सेगमेंट है एक हदीस एक सबक। आज बहुत ही प्यारी हदीस पाक बयान की जाएगी जिसमें हुकूकुल इबाद का बयान है। जी हाँ, एक मर्ज हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है, मुसलमानों के हुकूक का ख्याल ना करना, मुसलमान पर जुल्म करना, उसका माल ना हक ले लेना और किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लेना। ये भी वबा आम है और कई जगह सुनने को मिलता है कि विरासत में अपने भाई के बच्चों की ज़मीन को गसब कर लिया, फलां की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया और फिर उसको परेशान करते हैं और यहाँ तक के ढिठाई के साथ उसके हक़ से उसको महरूम कर दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस पाक है, फरमाया अय्युमा रजुलिन ग़लमा शिबरम मिनल अर्ध कल्लफहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अन यहफिरहु हत्ता यबलुग आखिर सबई अर्दीन ثم يطوقه الى يوم القيامه حتى يقضى بين الناس।
जो शख्स जुल्मन बालिश्त पर जमीन ले ले, अल्लाह पाक उसे इस बात का पाबंद करेगा कि इसे सात जमीनों की तह तक खोदे, फिर क्यामत के दिन तक इसका तोक यानी हार पहनाएगा, हत्ता के लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाए। इस हदीस पाक की शरह में मुफ्ती अहमद यारखा नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये शख्स खुद सात तह जमीन तक बोरिंग करे और खुद ही अपने गले में हार बनाकर पहने फिरे, इला यौमिल क़ियामा से मुराद क़ियामत का आखिरी हिस्सा है। शारे बुखारी हजरत इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक कौल ये है कि इस शख्स को ज़मीन में दसा दिया जाए तो गस्व की हुई ज़मीन उसकी गर्दन में हार की तरह हो जाएगी। एक और शरह यह भी की गई कि इसकी गर्दन को बड़ा कर दिया जाएगा यहाँ तक कि वो इतनी हो जाए, या ये कि इस शख्स को इस बात का मुकल्लफ बनाया जाएगा कि वो इसका तोक बनाए और वो इसकी ताकत ना रखता होगा तो यूं इसको अजाब दिया जाएगा। आला हजरत ने बड़ी चोट करने वाली बात इरशाद फरमाई कि अगर हम दुनिया में गौर करें कि मन दो मन या 20-25 सैर ही मिट्टी के डेले अगर गले में बांध दिए जाएं और थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ दिया जाए, कितनी तकलीफ में हम मुब्तला हो जाएंगे, और क़यामत में जिसने ज़मीन पर कब्ज़ा किया होगा सात ज़मीनों तक उसको गले का हार बना दिया जाएगा, किस कदर ये तकलीफ दे अमल होगा। आज हो सकता है कि ज़मीन पर कब्ज़ा करना आसान हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई में भी आप जीत जाएं, लेकिन याद रखिए कि क़यामत के दिन जो अदालत कायम होगी उसमें सबको हिसाब देना पड़ेगा, उसमें ना झूठे वकील काम आएंगे ना झूठे गवाह काम आएंगे, और जिसका हक मारा होगा उसको उसका हक दिया जाएगा और उसकी सूरत ये होगी कि इस शख्स की नेकियां दूसरे को दे दी जाएंगी, यूं इसकी नेकियां लेकर ये तो जन्नत में चला जाएगा और अगर रब नाराज हुआ और इसके मुकद्दर में जहन्नम हुआ तो ये नेकियों से खाली होकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल अमान वल हफीज। तो हमें इस हदीस पाक से ये सबक मिलता है कि मुसलमानों के हुकूक का ख्याल रखना है, मुसलमानों के माल की हिफाजत करनी है और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे से हमने बचना है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उलमा वारिसे इल्मे अंबिया रोशन रखते हैं इल्म की शमा।
हदीस पाक हमने सुनी, उससे हासिल होने वाला सबक भी सुना। अल्लाह करीम हमें अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। आइए प्रोग्राम में सवाल शामिल कर।
मेरा नाम अहमद रजा है, मैं जंग फिजा नमदीना से फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म बात कर रहा हूँ। मेरा हाजी साहब की बारगाह में सवाल ये है कि अपने आप के साथ मुखलिस होने से क्या मुराद है, इसकी वजाहत फरमा दें।
खुद से मुखलिस होने से मुराद जो समझ में आती है वो ये है कि अल्लाह पाक ने हमें जिस मकसद के लिए हयात दी है, जिंदगी दी है, हम उस मकसद के हुसूल में है। वो अल्लाह पाक ने इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, انسان اور جنات رب کائنات نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، اور علم و عمل کا مجموعہ یہ عبادت ہے. تو جو علم و عمل میں، یعنی علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، جو اس میں نہیں لگا ہوا وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہر غیر مسلم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہر گناہگار اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے. تو اپنے ساتھ مخلص کون ہے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اب اخلاص کے بہت سارے اقوال ہیں، تو میں نے خیر خلاصتاً آپ کو عرض کر دیا. اللہ سمجھنا نصیب کرے، عمل کرنا نصیب کرے.
اب وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
عبدالقدیر محسن اتاری ہریہ اسٹیشن ضلع منڈی بہاول دین تحصیل ملک وال. یہ میرا بچہ محمد عمر اتاری جامعۃ المدینہ ملک وال میں ساتویں کلاس میں پڑھتا ہے. اس کو ماحول کی وجہ سے اس نے امامہ شریف زلفیں سجائی، امامہ شریف سجایا، اور پانچ وقت کا نمازی ہے، اور یہ اشراق چاش بھی بلا ناگا پڑھتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے ہفتہ بار اجتماع بھی کرتے ہیں، اور ہم پانچ وقت کے سارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، میں نے بھی زلفیں رکھی ہیں، الحمدللہ امامہ شریف بھی باندھا ہوا ہے. امیر اہل سنت کی وجہ سے الحمدللہ ہم میں بہت تبدیلی آئی، اور الحمدللہ پورے ہریہ اسٹیشن میں بہت تبدیلی آئی. الحمدللہ اس ماحول کی وجہ سے ہمارے محلے کے پانچ بچوں نے داخلہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی وجہ سے سب کو برکتیں عطا فرمائے، امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. رحمان عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سکھایا، اس چیز کا بیان قرآن پاک کی کس صورت میں کیا گیا ہے؟ اس صورت مبارکہ کا نام بتانا ہے. انشاءاللہ الکریم قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفہ پیش کیا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم دین کا حریص بنائے، علم دین کے حصول کے لیے کوششیں کرنے والا اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے والا بنائے، اور فیضان علم مصطفیٰ عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.